विक्टोरिया का एज केयर सेक्टर कोविड 19 महामारी की चपेट में आकर हुई 100 से अधिक निवासियों की मौत के कारण परेशानी में है। इस मुश्किल घड़ी में आप यदि अपने प्रियजन के लिए एज्ड केयर में जगह ढूंढ रहे हैं तो कुछ सबक ध्यान में रखें। ऑस्ट्रेलिया भर की या विक्टोरिया के एज्ड केयर सेक्टर की बात करें तो दर्जनों नर्सिंग होम कोरोना वायरस के कारण हाई अलर्ट पर हैं। रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल के मेडिसिन और कम्युनिटी केयर विभाग की डायरेक्टर और एज्ड केयर मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर एंड्रिया मेयर कहती हैं कि रेजिडेंशियल केयर संस्थानों में कोविड 19 महामारी के फैलने की खास वजह है।
इफ पीपल लिव टुगेदर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी लाइक इन रेजिडेंशियल एज केयर फैसिलिटी द रिस्क ऑफ आउटब्रेक इज मच मच हायर।
पिछले सेंसस के अनुसार देश में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों में हर 3 में से एक व्यक्ति विदेश में पैदा हुआ था। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार 1.2 मिलियन वृद्धों ने एज्ड केयर सर्विसेज का इस्तेमाल किया, जिसमें 7% ने रेजिडेंशियल एज केयर को चुना। मल्टीकल्चरल एज्ड केयर की सीईओ रोजा कोलेनेरो कहती हैं कि अक्सर सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समाज के परिवार अंतिम उपाय के रूप में रेजिडेंशियल एज्ड केयर का इस्तेमाल करते हैं।
And it means for the family, they feel extra guilty because if then there goes into lockdown and they can't see their family member, it's extra strain. And then you get family members who might have difference of opinion. The anxiety and stress is really quite significant.
Productivity Commission की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा अप्रूव करने के बाद एज्ड केयर फैसिलिटी में जगह मिलने में करीब 5 महीने का इंतजार करना होता है। सुश्री कोलेनेरो कहती हैं कि परेशानियों से बचने के लिए परिवारों को अपने जीपी से समय पूर्वक अप्रूवल ले लेना चाहिए।
Going into residential care, the doctor needs to contact My Aged Care and there needs to be an assessment. Now, usually that assessment specifies whether it's urgent and some people have been assessed for what's called package care and then may have access to respite. You need to be eligible for a government subsidy. Even before you start thinking of which residential facility, there are all these other things that you have to be able to do when you're feeling really stressed.
Michelle? एज्ड केयर की पूर्व कर्मचारी हैं, लेकिन जब उनके माता पिता को जरूरत पड़ी तो सिस्टम को समझना उनके लिए मुश्किल हो गया। ऑस्ट्रेलिया भर के 3000 से ज्यादा एज्ड केयर संस्थानों में से अपनी भाषा की समझ वाली फैसिलिटी ढूंढना आसान नहीं था। खैर, उनकी मां ने सिस्टम से मदद ली और अपने लिए शॉपिंग और क्लीनिंग में मदद के लिए केयरर का पहले ही इंतजाम कर लिया था, जिससे कुछ साल बाद उन्हें रेजिडेंशियल फैसिलिटी में दाखिल होने में मदद मिल सकी।
She had a carer come to the home to help her with shopping and cleaning and those sorts of things for some years. My mum's Dutch and the carer that came to her house was also Dutch. So that transition into further care and needing more was much easier.
मिशेल के पिता की मृत्यु एज केयर फैसिलिटी में आने जाने के प्रतिबंध लगने से एक दिन पहले हो गई थी, जिसके कारण वे अपने पिता को अंतिम गुडबाय कह सकी।
It was a really difficult time, the uncertainty of what's happening in the country, but having just lost your dad and trying to stay connected with your mum was really difficult.
और एज्ड केयर फैसिलिटी ने भी उनके परिवार को कड़े नियमों के तहत उनकी मां से मिलने की अनुमति दे दी।
Those visits really sparked her and woke her up again and really helped her to cope better. Also, what they did was have frequent video calls 2 or 3 times a week. That was really important to see her face and for her to see us because clearly she was missing Dad and was coming to terms with that. It wasn't perfect, but it made it so much better.
यदि आप अपने परिजन के लिए एज्ड केयर फैसिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो प्रोफेसर मेयर का सुझाव है कि उनके लिए मेडिकल, सोशल और कल्चरल ढांचे को परखें। क्या वे आसानी से आपकी जरूरत पर खरे उतरते हैं या नहीं?
Safety, safety, safety first. If there was a recent outbreak in the facility, how was that managed? Was the GP involved?
How did the management react? If you have a single room, you could isolate if there would be an outbreak. Talk to other residents if they feel safe. Talk to other family members. What kind of information has been provided in the last week to actually communicate with the family to get a better idea if the residential aged care facilities, if they are on top of the pandemic?
मार्गरेट ने अपनी श्रीलंका में जन्मी माँ के लिए अपने अनुसार बेहतरीन फैसिलिटी चुनी, लेकिन वे चेतावनी देती हैं कि रेजिडेंशियल फैसिलिटी चुनते हुए केवल उसके अपीयरेंस पर भरोसा ना करें।
We have many examples of older people going, well, you know, I want to learn how to grow my own food, but I don't want to go outside anymore. I've got cancer or I've got arthritis and it gets really cold outside. I want to grow my own stuff internally.
ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग और मिडविफरी फेडरेशन के अनुसार 89% रेजिडेंट स्टाफ की कमी को एक समस्या मानते हैं। इसी तरह मार्गरेट भी उनकी मां की लग्जरी एज्ड केयर फैसिलिटी में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी से परेशान हैं।
So I've actually been taking my own mask. So it's been very disappointing. And also the temperature, the test people's temperatures. And when you look at the directory of, you know, like all the people that have signed in, every single person has the same temperature. That's absolutely impossible. So clearly the temperature gauge is not working.
साधारण परिस्थिति में प्रोफेसर मैय कहती हैं कि आपको अलग अलग समय पर फैसिलिटी में कई बार जाना चाहिए जिससे आप वहां की साफ सफाई, स्टाफ की स्थिति का आभास कर सकें। लेकिन अभी लॉकडाउन के बीच भी कुछ संस्थान वर्चुअल टूर करा रहे हैं। प्रोफेसर मैय कहती हैं कि कुछ चिन्हों को देखकर ही आप पहचान सकते हैं।
Having the ability to see all the locations during the tour, the management or the nursing staff, how do they react to the questions you have? Maybe even have a virtual tour on a Sunday, maybe in the evening, to really see if you have questions remaining, how they react. Also in times where maybe the pressure on the staff working there is a little bit higher, to see what the resilience is of that facility.
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के अनुसार साल 2015 में होम केयर पाने वाले 26% लोग सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध थे। रोजा कोलनेरो के अनुसार इससे साफ पता चलता है कि ये परिवार अपने बुजुर्गों को कुछ मदद मिलने पर अपने घर में ही रखना पसंद करते हैं।
For example, an 80-year-old woman giving a shower or bath to an 82-year-old man, that's not good for the 80-year-old woman. She hurts her back, helping him in and out of bed, etc. So there can be these other ways of accessing the system, but also other ways of providing support.